नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं। ये संबंध तकनीक, व्यापार, शिक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग से प्रेरित हैं। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत को महत्वपूर्ण देश बताया। कहा, दोनों देश प्रमुख व्यापार समझौते की घोषणा के करीब हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने संवेदनशील बातचीत के लीक होने पर प्रधानमंत्री पैतुंग तान श्रीनावात्रा को निलंबित किया। मौसम विभाग के हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी के बाद बारिश से भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात ब्रिस्टल में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड से खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।
डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से देश के दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अब लोग महज एक क्लिक से स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण देश के लगभग हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डिजिटल सेवाओं ने शासन को तेज और अधिक पारदर्शी बना दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। आज लगभग 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ से अधिक व्यापारी UPI का उपयोग कर रहे हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया है, जिससे भारत एक वैश्विक डिजिटल शक्ति बन गया है। डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर श्री शाह ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य सभी क्षेत्र इससे सशक्त बने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थिति बहुत मजबूत है और ये वास्तव में हर भारतीय का बैंक है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल परिवर्तन से अपने ग्राहकों को काफी लाभ पहुंचाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में योग और स्वास्थ्य को संरक्षित करने की परंपरा प्राचीन है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया।
आज भारत का डंका सारा विश्व में बाज रहा है, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सपना देखते हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो इसी के लिए आज से हम लोगों को प्रयास करना होगा और इसी संस्था वो एक माध्यम होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सौर ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने एक समाचार दैनिक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रकाशित लेख को साझा करते हुए ये बात कही। इस लेख में देश के ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की पुष्टि की गई है। श्री जोशी ने कहा है कि भारत 224 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंच गया है, जिसमें 108 गीगावाट केवल सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। श्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का लिखा हुआ एक लेख भी साझा किया, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी और लद्दाख को इसके लाभ के लिए उपलब्ध कराए जा रहे प्रचुर संसाधनों का उल्लेख किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पिछले 25 वर्ष के दौरान भारत और अमेरिका संबंधों की सराहना की है। डॉ जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्ष में भारत अमेरिका संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक साझेदारी हुई है।
If you were to do a dipstick on India-US relations, you'll find it's better off than it was at the beginning of that presidency. And the trend line the last 25 years has actually been very, very strong. Because I think there are structural factors that work for the relationship. That the economics, the technology, the human bridges, the education, the security, the energy, all these are today drivers of the relationship.
डॉक्टर जयशंकर ने आशा व्यक्त की कि भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता के सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
We are in the middle, hopefully more than the middle, very intricate trade negotiation. Obviously, my hope would be that we bring it to a successful conclusion. I cannot guarantee it because there's another party to that discussion. But no question, you know, we do think today that trade, you know, there will have to be give and take.
अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत को महत्वपूर्ण देश बताया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा होने वाली है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविच ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत की भूमिका की प्रशंसा की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सशक्त व्यक्तिगत संबंधों पर भी प्रकाश डाला।
India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the president has a very good relationship with Prime Minister Modi, and he will continue to have that.
प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पैतोंग तान श्रीनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया है। न्यायालय ने आज घोषणा की कि उसने 36 सेनेटरों द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पैतोंग तान पर संविधान के तहत नैतिक मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। ये सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि रेल अधिकारियों का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर होना चाहिए।
हमारा सारा फोकस कस्टमर्स की सेफ्टी पे, पैसेंजर्स की सेफ्टी पे रहना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी इंसिडेंट हो उसके रूट कॉज में जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, रूट कॉज को सॉल्व करके भविष्य में वैसी प्रॉब्लम ना आए वो हमें सोचनी चाहिए। हमें अपने जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं कई गुने बेटर करने की जरूरत है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर क्वालिटी आने से रिलायबिलिटी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ने से सेफ्टी बढ़ेगी, ऑपरेशन सहज होंगे।
श्री वैष्णव ने बताया कि रेल वन ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं। रेल वन ऐप को एंड्रॉयड प्ले और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पाशमाइलाटम में दवा संयंत्र में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पुलिस अब तक केवल 11 शवों की पहचान कर पाई है। अस्पताल में भर्ती 35 श्रमिकों में से 12 की हालत गंभीर है। बचाव अभियान की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने कहा है कि मलबे में अब भी करीब 16 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों की मदद से बचाव कार्य 24 घंटे जारी है। बताया जा रहा है कि मृतकों में अधिकतर ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी श्रमिक हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस दुखद घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संगारेड्डी जिले में दवा संयंत्र विस्फोट पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ऐसी ही पिछली घटनाओं और उठाए गए निवारक उपायों का विवरण शामिल है। श्री रेवंत रेड्डी ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की आलोचना की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि तेजस्वी यादव तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।
जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव जी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं?
एयर मार्शल एस शिव कुमार ने आज नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल ने कहा को जून 1990 में भारतीय वायुसेना की प्रशासन शाखा में कमीशन दिया गया था। देश में वस्तु और सेवा कर GST लागू होने के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस कर प्रणाली को देश में आर्थिक एकीकरण और कर सुधारों की दिशा में एक बड़े बदलाव के रूप में साल 2017 में पेश किया गया था। इसने भारत में अप्रत्यक्ष करों की श्रृंखला को एकीकृत प्रणाली में बदल दिया। एक रिपोर्ट।
GST ने कर अनुपालन को आसान बनाया है, व्यापार लागत को कम किया है और राज्यों में वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की है। इन उपायों ने न केवल व्यापार करने में सुगमता दी है बल्कि कर आधार को भी सशक्त बनाया है। GST परिषद द्वारा देश में वस्तु और सेवा कर की दरें निर्धारित की जाती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। GST ने अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT और अन्य शुल्कों को समाप्त कर एकल कर व्यवस्था प्रारंभ की है। पिछले 5 वर्षों में GST के संग्रह में लगभग 2 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्व संग्रह में लगातार हो रही वृद्धि और 1,50,00,000 से अधिक सक्रिय करदाताओं का शामिल होना इसकी सफलता का प्रमाण है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश में आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के मंडी जिले में कल सबसे अधिक 223 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग लापता हैं। बीती रात हुई तेज वर्षा और बादल फटने की घटनाओं से मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए राहत और बचाव अभियानों के जरिए 99 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की आशंका से मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में शिक्षण संस्थाएं आज भी बंद हैं। NDRF, SDRF और प्रशासन द्वारा लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज इंग्लैंड के ब्रिस्टल में काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। कैप्टन हरमनप्रीत कौर चोटिल होने के कारण मैच से बाहर रहीं। उनके स्थान पर स्मृति मंधाना ने टीम का नेतृत्व किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा भारत तथा अमेरिका के संबंध मजबूत हैं। ये संबंध तकनीक, व्यापार, शिक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग से प्रेरित हैं। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत को महत्वपूर्ण देश बताया। कहा दोनों देश प्रमुख व्यापार समझौते की घोषणा के करीब हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने संवेदनशील बातचीत के लीक होने पर प्रधानमंत्री पैतुंगतान श्रीनावात्रा को निलंबित किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।